क्लास चल रहा था 15 नवंबर 1966 का।
The class date is 15th November 1966. Was in progress.
पहली पेज के मध्य अंत में बात चल रही थी।
The topic being discussed in the beginning of the middle part of the first page was.
बाप के नीचे ठीक है विष्णु।
Vishnu is exactly below the father.
और विष्णु के नीचे ठीक है ब्रह्मा।
And Brahma is exactly below Vishnu.
क्यों?
Why?
बाप ही निराकार स्टेट।
क्योंकि बाप निराकारी धाम के नजदीक है।
Student, the father has an incorporeal stage. It is because the father is close to the incorporeal abode.
और विष्णु साकारी धाम के नजदीक है।
And Vishnu is close to the corporeal abode.
लेकिन सुख धाम में है।
But he is in the abode of happiness.
दुख धाम में नहीं है।
He isn't in the abode of sorrow.
और आत्मिक स्टेज वाला है।
And he is the one with the soul conscious stage.
Devan ki stage nahi banti.
He doesn't attain body conscious stage.
Kiski?
Who?
Vishnu.
Vishnu.
To baap se niche hai.
He is below the father.
Baap supreme soul seva jo shankar mein pravesh karta hai.
The father, the supreme soul shiv who enters Shankar.
तो शंकर की जो शंकरपुरी है उसके नीचे विष्णु ठीक है।
विष्णु इज एग्जैक्टली बिलो द अबोड ऑफ शंकर।
और विष्णु के नीचे ब्रह्मा ठीक है।
एंड ब्रह्मा इज एग्जैक्टली बिलो विष्णु।
क्यों?
वाई?
क्योंकि ब्रह्मा
साकार।
इट इज बिकॉज ब्रह्मा स्टूडेंट इज कॉर्पोरियल।
साकार में तो है लेकिन साथ साथ साकार के साथ साथ वो दुखधाम में भी
है। He is certainly corporeal, but along with it, he is also present in the abode of sorrow.
सुखधाम में नहीं है।
He isn't present in the abode of happiness.
तो तीन धाम है।
So there are three abodes.
Shanti Dham, sabse unch.
The abode of peace is the highest.
Jiske sabse nazdeek hai Dev Dev Mahadev Shankar.
Dev Dev Mahadev Shankar is the closest to it.
Pehli murti.
He is the first personality.
Uske niche Sukh Dham mein Vishnu.
Below him, there is Vishnu in the abode of happiness.
और उसके नीचे दुखधाम में ब्रह्मा।
And below him, there is Brahma in the abode of sorrow.
ये तीसरा तबका हुआ।
It is the third abode.
तो ये तीन वतन में त्रिमूर्ति ठीक दिखाई है।
So the Trimurti, three personalities have been shown correct in these three abodes.
ये है बाप से विष्णुपुरी का वर्षा।
This is the inheritance of Vishnu's abode from the father.
निराकार सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर की मूर्ति के द्वारा मूर्तमान बनता है।
The incorporeal supreme soul father Shiv becomes corporeal through Shankar's personality.
ऐसे नहीं अमूर्त है।
It isn't that he is incorporeal.
शंकर आकारी है।
और शंकर is सतन।
आकारी में आकर के शिव बाप वर्षा देता है नहीं।
And the father Shiv comes in the subtle one and gives the inheritance. No.
मूर्त माने साकार।
मूर्त means corporeal.
और अमूर्त मन जिसका मूर्ति न हो।
An amurt means the one who doesn't have मूर्ति।
मूर्ति मन
What does Murti mean?
Sakari Swarupuna.
The one who doesn't have a corporeal form.
So, aise nahi ki Shankar nirakari aakari hai. Aakari hote hue bhi, aakari state mein rehte hue bhi, wo sakar sharir ke dwara aakari bhi banta hai. Nirakari bhi banta hai. Aur
so, it isn't that Shankar is just subtle. Despite being subtle and staying in the subtle stage, through the physical body, he becomes subtle, incorporeal as well as.
And Shankar ko dadi mujhe wala bhi dikhaya jata hai.
Shankar is also shown as the one with beard and moustache.
Mane?
It means.
Dadi mujhe hoti hai, vikari ko ya nirvikari ko.
Does a vicious or a viceless one have beard and moustache?
Vikari.
A vicious one.
ये तीन अवस्थाओं में आने के लिए हमको भी बाबा ने बोला हुआ है क्या
सो बाबा हैज ऑल्सो टोल्ड अस टू अटेन दीज थ्री स्टेजेस वॉट
घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो क्या प्रैक्टिस करो
प्रैक्टिस इट टाइम एंड अगेन वॉट शुड यू प्रैक्टिस
अभी आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज दुनिया भूल जाए
You should be corporeal this moment. You should be subtle the next moment. You should attain the stage of thinking and churning and forget the world.
ये विकारी दुर्गदाई दुनिया भूल जाए.
You should forget this vicious sorrow-giving world.
आकारी स्टेज वाला नई दुनिया का मन चिंतन मंथन चले.
Subtle stage means you should think and churn about the new world.
सेवा के फील्ड के प्लान बुद्धि में चले. है ज्ञान की बातें जो मुरली में बाबा ने ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान की गहराइयों की बातें बुद्धि में चले तो आकारी स्टेज
यू शुड प्लान द सर्विस ऑफ द सर्विस फील्ड इन योर इंटेलेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉलेज दैट बाबा हैज नरेटेड इन द मुरलीज शुड गो ऑन इन योर इंटेलेक्ट दैट इज द सटल स्टेज
और उससे भी ऊंची स्टेज है कोई संकल्प नहीं
And the stage higher than it is no thoughts at all.
Dugadam ki duniya ka bhi koi sankalp nahi. Sugadam ki duniya ka bhi koi planning nahi. Gyan ka bhi koi manan chintan manthan nahi. Sirf main atma jyoti bindu mera baap wo bhi jyoti bindu
hai. No thoughts of the abode of sorrow. No planning of the world of the abode of happiness, no thinking and churning of the knowledge either. You should just have this thought. I am a point of light soul. My father is also a point of light. The incorporeal stage, the stage of having no thoughts at all. Is the highest stage. Why is it the highest stage?
क्योंकि उसमें पाप कर्म बड़ी तेजी से भस्म होते
It is because the sinful deeds are burned to ashes very rapidly in it.
मनन चिंतन मंथन की स्टेज में पाप कर्म भस्म उतना नहीं हाँ बनेंगे नहीं
The sinful deeds aren't burned to ashes to that extent in the stage of thinking and churning. Yes. You will certainly not perform them.
क्या
वॉट
पाप कर्म बनेंगे नहीं लेकिन
यू वोंट परफॉर्म सिंपल डेट्स बट दे वोंट बी बर्न टू एशेस ईदर
जिसे सोना होता है सोने में खाद पड़ती है चांदी की तांबे की तो सोना कम कैरेट का हो जाता है
फॉर एग्जाम्पल देयर इज गोल्ड इजंट देयर When the impurities of silver, copper are mixed in it, it is termed as the gold of less carat.
तो ऐसे सोने को, गोल्ड को आग में गलाया जाता है.
So, such gold is melted in fire.
तो धीमी आग होगी, तो खाद नहीं निकलेगी.
If the flame is low, the impurities won't be removed.
जो तांबा चांदी की खाद है, उसमें पड़ी हुई, वो नहीं निकलेगी.
The impurities of copper or silver in gold won't be removed.
जब तीव्र अग्नि होगी,
when the fire is intense,
तो गोल्ड में से खाल निकल जाएगी.
the impurities in it will be removed.
ऐसे ही आत्मा में से खाद जन्म जन्मांतर के पापों की तब निकलती है जन्म जन्मांतर का जो आत्माओं का हमने संग लिया है कम कलाओं वाली आत्माओं का.
In the same way, the impurities of the sins of many births from the soul is removed when the company of the souls with fewer celestial degrees which we have kept for many births.
जैसे देवता ही आत्माओं में त्रेता युग में आकर के चांदी जैसी आत्माएं परम धाम से उतरी 14 कला से कम कला वाली तो उनका संग लिया.
Just like in the silver age, the deity souls took the company of the silver-like souls with fewer than 14 celestial degrees who descended from the supreme abode.
द्वापर में 8 कला से भी कम कला वाली तामे जैसी आत्मा कापत उनका संग लिया.
In the copper age, they took the company of the copper-like souls with fewer than 8 celestial degrees.
अब कलयुग में कलाहीन काली तमो प्रधान लोहे जैसी तामसी आत्माओं को संग लिया.
And in the Iron Age, we took the company of the dark, Tamo Pradhan, and iron-like Tamsi souls devoid of celestial degrees.
तो उनका संग लेने से आत्मा पतित बन गई, काली बन गई, विकारी बन गई, पापी बन गई.
Our soul became impure, dark, vicious, and sinful because of taking their company.
तो उन पापों को नष्ट करने के लिए जलाने के लिए योग की तीव्र अग्नि चाहिए.
So you need the intense fire of yoga to destroy, burn those sins.
तो वो तीव्र अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सोना शुद्ध बन जाता है 24 कैरेट का.
When intense fire is ignited, gold becomes pure, 24 कैरेट gold.
आत्मा भी हमारी 24 कैरेट की शुद्ध 16 कला संपूर्ण बन जाती है.
Even our soul becomes 24 कैरेट pure, complete with 16 celestial degrees.
तो तीव्र अग्नि हुई माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बने.
There is intense fire means you should attain the incorporeal, viceless and egoless stage.
जैसे हमारा बाप वैसे हम बच्चे बने.
As is our father, so should we children become.
तो विष्णु की स्टेज ऊंची नहीं है.
So विष्णु स्टेज isn't high.
ऊंची स्टेज क्या है?
What is the high stage?
बाप समान स्टेज.
The stage equal to the father.
और वो बाप?
And that father?
ऐसे नहीं कि ज्योति बिंदु को याद करें तो हो जाएगा.
It isn't that it will be enough if you remember the point of light.
सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो ज्योति बिंदु में पाप नहीं होते.
If you remember just the point of light doesn't have sins.
जो भस्म.
So that they have to be burned to ashes.
क्या?
What?
वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसमें अनेक जन्मों के पाप और संग का रंग होता है क्योंकि वो तो हीरो पार्टधारी है इसलिए ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आता है.
The one whom that point of light enters has sins and the color of company of many births, for he is the hero actor. This is why he comes in the connection of numerous souls.
वो सबसे जाती नीचे भी गिरता है और सबसे जाती ऊपर भी होता है.
He falls as well as rises the most.
तो उस आत्मा में गिरने का और उठने का तीव्र मात्रा है.
So that soul has a great capacity of falling as well as rising.
ऐसी आत्मा का अगर हम भी संग करेंगे उस स्वरूप को अगर हम याद करेंगे उस साकार में निराकार को याद करेंगे तो हमारी आत्मा में भी वो पावर आ जाएगी. क्या?
If we too take the company of such soul, if we remember that form, if we remember the incorporeal one in that corporeal one, our soul will also receive that power. What?
नीचे जाने की और ऊपर
आने. Of falling and rising.
बहुत सी आत्माएं इस दुनिया में ऐसी हुई है कि जब उन्होंने जिस घराने में जन्म लिया तो बहुत नीचे तबके में थी.
जस्ट लाइक देयर हैव बीन मेनी ऑफ सच सोल्स इन दिस वर्ल्ड हु वर बोर्न इन द फैमिलीज विद वेरी लो पोजिशन.
और पुरुषार्थ करके वो सम्राट बन के बैठ गई.
And they made Purusharth and became an emperor.
जैसे विक्टोरिया का वजीर.
For example, the minister of Victoria.
रोड की ट्यूबलाइट में पढ़ाई पढ़ता था.
Used to study under the street light.
पुरुषार्थ करके क्या बन गया?
Later, what did he become after making Purusharth?
Victoria का.
Victoria.
महारानी विक्टोरिया जिसका सारी दुनिया के ऊपर राज्य था. कभी सूर्य अस्त नहीं होता था उसके राज्य में. उसका वजीर बन गया.
क्वीन विक्टोरिया हु रूल्ड द एंटायर वर्ल्ड द सन नेवर सेट इन हर किंगडम. ही बिकेम हर मिनिस्टर.
वजीर जो होता है ना वो तो राजा को भी चलाता है.
अ मिनिस्टर कंट्रोल्स इवन द किंग.
उसको भी अकल देता है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए.
He also gives advice to him. You should do like this. You shouldn't do like this.
जैसे बाबर साधारण सिपाही था.
For example, Babar was an ordinary soldier.
क्या बन गया?
What did he become?
साधारण सिपाही थे सारे भारत का सम्राट बन के बैठ गया.
From an ordinary soldier, he became the emperor of the entire Bharat.
ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक ही जीवन में बहुत ऊंचा पद बना लिया. नीचे से नीचे पद से लेकर के ऊंचे से ऊंचा पद बना लिया.
There have been many people like this who attained a very high position in the same birth. They attained the highest position from the lowest position.
तो ये आत्मा में शक्ति कहाँ भरी जाती है?
So, where is the power filled in the soul?
किसके संग तेरंग से ये शक्ति आती है?
From the color of whose company do you receive this power?
We bought this company.
From the color of that very father's company.
जैसा पढ़ने वाला होगा वैसा ही पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा.
As is the teacher, so will be his student.
पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं होगा तो पढ़ने वाला स्टूडेंट डॉक्टर नहीं होगा.
If the teacher isn't a doctor, his student won't become a doctor.
पढ़ने वाला वकील नहीं होगा तो पढ़ने वाला स्टूडेंट जज बन जाएगा.
If the teacher isn't a lawyer, how will his student become a judge?
पढ़ने वाला इंजीनियर नहीं होगा तो पढ़ने वाला इंजीनियर कैसे बन जाएगा.
If the teacher isn't an engineer, how will his student become an engineer?
तो यहाँ भी ऐसी.
So, it is the same here as well.
शिव ज्योति बिंदु न तो ऊंचे से ऊंचा बनता है न नीचे से नीचा बनता है.
शिव द पॉइंट ऑफ लाइट नीदर बिकम्स द हाईएस्ट ऑफ द हाई नॉट द लोएस्ट ऑफ द लो.
क्या?
व्हाट?
ज्ञान उसके द्वारा आता है लेकिन वो स्वयं न ऊंचा बनता है न नीचे बनता है.
द नॉलेज कम्स थ्रू हिम हाउएवर He himself neither becomes high nor low.
ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण जन्म तो हमारा बनता है नीचे से नीचे शूद्र का जन्म हमारा बनता है.
In fact, we have the highest of the high Brahmin life and the lowest of the low life of a Shudra.
तो पढ़ाई पढ़ाने वाला भी हर परिस्थिति से गुजरने वाला होना चाहिए.
So, even the teacher should be the one who passes through every state.
वो स्वरूप होगा तो हमारी पढ़ाई पूरी होगी.
If it is that form, our study will be completed.
तो वो सुप्रीम सोल वो जिसमें प्रवेश करता है वो है उच्चतम उच्च पद पाने वाला सारे विश्व का मालिक.
So, the one whom that supreme soul enters is the one who attains the highest position, the master of the entire world.
जो डायरेक्ट नरसी नारायण बनता
है. He directly becomes Narayan from a man.
और अंत में आकर के बेगर बन जाता है.
एंड ही बिकम्स अ बेगर एट द एंड.
क्या?
व्हाट?
जैसे क्राइस्ट की आत्मा के लिए भी कहा जाता है.
फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो सेट फॉर क्राइस्ट सोल.
इस समय कहीं बेगर के रूप में
है? He is somewhere in the form of a beggar at present.
सभी धर्म पिताएं अभी नीची गिरी हुई स्थिति में.
All the religious fathers are in the degraded stage now.
क्योंकि धर्म पिताएं अपने अपने धर्म के सबसे ऊंचे माने जाते हैं.
It is because the religious fathers are considered to be the highest in their respective religions.
और वही कलयुगी पतितमो प्रधान दुनिया में आकर के सबसे नीचे पार्ट हो जाते.
And they themselves play the lowest part, coming in the Iron Age, impure tamo pradhan world.
ऐसे सब धर्मों का जो बाप है.
In the same way, the father of all the religions.
सारी दुनिया का सारी मनुष्य शक्ति का पिता है वो सबसे ऊंची से ऊंची पार्ट में जाता है और सबसे नीचे से नीची पार्ट में जाता
है. द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड प्लेस द हाईएस्ट ऑफ द हाई एज वेल एज द लोएस्ट ऑफ द लो पार्ट.
तो सबसे ऊंची स्टेज हुई निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी.
सो the incorporeal, viceless and egoless stage is the highest stage.
इस स्टेज में बाप समान जो आत्माएं जितनी बनेंगी उतनी उनमें शक्ति इकट्ठी हो जाती.
The extent to which the soul becomes equal to the father in this stage, they gather power to that extent.
अभी बाप कैटेगरीज बता रहे हैं.
Now the father is telling us the categories.
इस दुनिया की आत्माओं की तीन प्रकार की कैटेगरीज है.
There are three kinds of categories of the souls of this world.
क्या?
What?
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर.
They are like Brahma, Vishnu and Shankar.
शंकर जैसी आत्माएं हीरो पार्टनर टॉप मोस्ट.
The souls like Shankar are the topmost hero actors. All the religious fathers are included in it.
वो जिस वर्ग में भी रहेंगी जिस माहौल के बीच में रहेंगी वो हीरो वर्ग में रहेंगी.
Whichever category they are in, whatever atmosphere they stay in, they will stay as a hero.
दूसरी कैटेगरी विष्णु पाटनर.
Then the second category is of the actors like Vishnu.
न ज्यादा ऊंचे जाएंगे न ज्यादा नीचे जाएंगे.
They will neither go very high nor very low.
लेकिन सुखमय स्टेज में रहेंगे.
However, they will live in the joyous stage.
क्या?
What?
दुख भी ज्यादा नहीं होंगे. दुख ज्यादा नहीं होता है आपको कभी. बहुत सुख रहता है. लेकिन सुखमय स्टेज भी एक लिमिट में होगी.
They won't suffer much sorrow either. They never suffer much sorrow. They are very happy. However, there will be a limit of their joyous stage as well.
कितनी लिमिट में?
What limit?
16 कला संपूर्ण.
Complete with 16 celestial degrees.
उससे उनकी लिमिट में नहीं जाती.
They don't reach a limit higher than that.
और जो सबसे ऊंचे वाली तबके वाली आत्मा होती है वो ऐसी निराकारी स्टेज में जाती है कि शरीर रहते हुए भी शांति की स्टेज में रहती.
एंड द सोल्स ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी स्टेबलाइज इन सच इनकॉर्पोरियल स्टेज दैट दे स्टेबलाइज इन अ पीसफुल स्टेज डिस्पाइट हैविंग अ बॉडी.
शरीर कौन सा है? पतितम प्रधान.
हाउ इज देयर बॉडी? इम्प्योर तमो प्रधान.
शरीर सड़ता जाएगा आत्मा उनकी पावरफुल बनती जाएगी.
देयर बॉडी कंटिन्यूज टू रॉट एंड देयर सोल विल कीप बिकमिंग पावरफुल.
संगम युग में वो चढ़ती कला का ही अनुभव करेंगे.
इट मीन्स दे विल जस्ट एक्सपीरियंस द राइजिंग सेलेस्टियल डिग्रीज इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
गिरती कला का अनुभव नहीं करेंगे.
दे डोंट एक्सपीरियंस द डिसेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज.
और सबसे नीचे तबके की आत्मा है ब्रह्मा जैसी.
एंड द सोल्स ऑफ द लोएस्ट कैटेगरी आर लाइक ब्रह्मा.
उनकी स्थिति क्या है?
हाउ इज देयर स्टेट?
है साकार.
दे हैव अ कॉर्पोरियल स्टेज.
इस ब्राह्मण जन्म में ज्ञान लेने के बाद जो जितना साकारी स्टेज रहता है उतना ही कुछ न कुछ कमी आती रहती है।
The extent to which someone stabilizes in the corporeal stage after taking the knowledge in this Brahman life, he keeps having some or the other weakness to that extent.
परिचय मिल गया ना? आत्मा का परिचय मिल गया, ज्योति बिंदु, परमात्मा का परिचय मिल गया, ज्योति बिंदु।
He received the introduction of the supreme soul that he is a point of life.
तो संध्याकाली स्टेज में टिकना चाहिए ना?
So he should stabilize in that incorporeal stage, shouldn't he?
लेकिन नहीं टिक पाते।
However, he isn't able to stabilize in that stage.
पूर्वजों का कुछ न कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि बच्चे उनको ऊंचा नहीं करने देते।
He has some of the other karmic accounts of the previous births so that the children don't let him rise high.
ब्रह्मा का तो हार्ट फेल कर दिया उस समय।
In fact, they made Brahma suffer a heart failure at his last time.
तो दुखधाम का जैसे पार्ट हो जाती है।
So it is as if he played the part of the abode of sorrow.
तो तीन धाम हुए, क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम।
So there are three abodes. What? The abode of peace, the abode of happiness, and the abode of sorrow.
सुख धाम का मुखिया, शांति धाम का मुखिया और
There are the chiefs of the abode of happiness, the abode of peace, and the abode of sorrow.
Shanti Dham ka mukhya kaun hua?
Who is the chief of the abode of peace?
Is sakar shakti par practical mein sakar duniya mein. Shanti Dham ka mukhya kaun hua?
Who is the chief of the abode of peace in this corporeal world in practice?
Shiva Shankar Bhole Nath jisko kaha jata hai. वो स्वरूप हुआ शांति धाम का मुखिया।
The form that is called Shiv Shankar Bholenath is the chief of the abode of peace.
उसके बाद फिर उसके नीचे जितने भी आएंगे उस कैटेगरी की आत्माएं वो सब नंबर वन होंगी।
After him, all the souls of that category who come under him will be number वाइज।
और दूसरी कैटेगरी बताएं? सुखधाम का मुखिया। कौन?
And the soul of the second category was said to be the chief of the abode of happiness. Who?
Vishnu.
Neutral.
He is neutral.
Na jada unchai, na jada nichai. Aur?
He is neither very high nor very low. And?
Tisra hua? Vishnu aur Brahma.
The third one is Brahma.
Brahma hai niche tabakke mein.
Brahma belongs to the lower abode.
नीचे तबके में माना साकार सृष्टि की नजदीक या निराकारी सृष्टि की नजदीक।
What does lower abode mean? Is it closer to the corporeal world or the incorporeal world?
साकार पांच तत्वों वाली दुनिया से पीछा नहीं छोड़ा पाते।
The corporeal world. He isn't able to free himself from the world of five elements.
लास्ट में जाकर के उनको वो स्टेज मिलती है।
At the end, where does he attain that stage?
जो कहाँ जाकर के? सत्य की आग में जाकर के सोलह कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में उनको जन्म मिलता है। किससे मिलता है?
He is born in the form of Krishna, complete with 16 celestial degrees in the beginning of the golden age. From whom is he born?
Bhakshma.
He is born from the father.
तो देने वाला भी कौन हुआ?
So who is the giver as well?
बाप।
The father.
और लेने वाला कौन हुआ?
बच्चा।
And who is the one who takes?
बच्चा।
The child.
तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ?
So who is more powerful?
बापी पावरफुल हुआ?
The father himself is powerful.
बाप रचयिता होता है, बच्चा रचना होती है।
The father is the creator and the child is the creation.
इसलिए बोला बाप के नीचे ठीक है विष्णु।
This is why it was said Vishnu is exactly below the father.
और विष्णु के नीचे ठीक है ब्रह्मा।
And Brahma is exactly below Vishnu.
ये है बाप से विष्णुपुरी का वर्षा। क्या?
This is the inheritance of Vishnu's abode from the father. What?
ब्रह्मा भी जब तक विष्णु न बने, विष्णु जैसी केश को धारण न करे, तब तक वो सुख का वर्षा नहीं ले सकता।
Unless Brahma also becomes Vishnu, unless he attains the stage like Vishnu, he can't take the inheritance of happiness.
शूटिंग हो रही
है। The shooting is taking place.
अभी शूटिंग हो रही ही नहीं।
Is the shooting taking place now or not?
हो रही।
It is.
तो शूटिंग पीरियड में ज्यादा समय सुख शांति भोगनी चाहिए या दुख शांति भोगना चाहिए?
So, should you experience happiness and peace or sorrow and restlessness for a long time in a shooting period?
सुख शांति भोगनी चाहिए।
You should experience happiness and peace.
और कोई आत्मा सुख शांति के स्टेज में शूटिंग पीरियड में सुख शांति न भोगे?
And if some soul doesn't experience happiness and peace in the stage of happiness and peace in the shooting period, for example, the father says, the confluence age is the age of joy.
अशांति की अनुभूति होती रहे तो शूटिंग तो खराब हुई ना।
The confluence age is the pleasant age. If you call it the age of joy with your mouth and don't feel joy within, if you keep suffering sorrow and restlessness, your shooting has certainly been spoiled, hasn't it?
जो खराब शूटिंग हुई तो अच्छा लगेगा?
If your shooting is spoiled, will you feel good?
नहीं।
Student, no.
अच्छा तो नहीं लगेगा।
You certainly won't feel good.
अच्छी शूटिंग होगी तो अच्छा लगेगा, खराब शूटिंग होगी तो अच्छा नहीं लगेगा।
If you perform good shooting, you will feel good. If you perform bad shooting, you won't feel good.
माना कुछ न कुछ ज्ञान की कमी रह जाती।
It means there is some or the other shortcoming in the knowledge.
वो जो ज्ञान की कमी रह जाती है, बाप की पहचान की कमी रह जाती है, वो फिर सारा गड़बड़
देती। That shortcoming in the knowledge, the shortcoming in the father's recognition causes the entire disorder.
इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते।
This is why Baba says, the children who stay with me don't recognize me either.
क्या?
What?
I don't know. सबसे ज्यादा राम वाली आत्मा का संग कौन सी आत्मा करती है? 84 जन्म।
Did you understand it? Which soul takes the company of the soul of Ram the most in the 84 births?
शिव तो परम धाम में बैठ गए।
Shiv certainly sat in the supreme abode.
उनकी तो बात छोड़ो।
Leave his question.
वो तो साक्षी हो गए।
He did become a detached observer.
बाकी राम वाली आत्मा के साथ सबसे जास्ती संग किसका होता है?
As for the rest, who takes the company of Ram's soul the most?
कृष्ण वाली soul का?
कृष्ण soul.
जो माँ का पार्ट बजाने वाली?
Who plays the part of the mother?
तो जन्म जन्मांतर के साथ ही होते हुए भी बाप के स्वरूप को फॉलो नहीं कर पाते।
So, despite being the companions of many births, he isn't able to follow the father's form completely.
इसलिए अंतिम जन्म में आकर के वो दुखधाम का शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं।
This is why he becomes the instrument of performing the shooting of the abode of sorrow in the last birth.
गांधी जी क्या कहते रहे जिंदगी भर?
What did Gandhi ji keep saying his entire life?
राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे।
I will bring Ram's kingdom.
कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया, फिर क्या हुआ?
He worked so hard, he sacrificed so much. Then what happened?
राम राज्य आया?
Did Ram's kingdom arrive?
और भी क्या आ गया?
What arrived all the more?
दुश्मन
रावण राज्य आ गया।
Ravan's kingdom arrived all the more.
तो जरूर कोई कोई न कोई कमी रह गई।
So some of the other shortcomings certainly remained.
अभी बाप कहते हैं गांधी बापू वो तो सिर्फ भारत का बापू था.
Now the father says Gandhi Bapu, that is father, was just the father of Bharat.
Yeah.
What?
Bharat ka Bapu.
He was the father of Bharat.
Bharat ko sambhalne wala.
The one who looks after Bharat.
Maa kahan sambhalti?
What does the mother look after?
Ghar sambhalti.
She looks after the house.
Aur baap? Ghar ko bhi dekhta hai aur bahar ko bhi dekhta hai.
And the father looks after the house as well as the outside world.
So, daira vistar ho gaya na.
So his sphere of control is wide, isn't it?
Daira vistar ho gaya mane buddhi vistar ho payi.
His sphere is wide. It means his intellect has reached expansion.
So buddhi jab vistar wali hoti hai, to us buddhi mein parak shakti aur faisla nirnay karne ki shakti zyada hai.
So, when his intellect reaches expansion, that intellect has more power of discrimination and the power of judgment. You should make the purushart of becoming such powerful soul. However, when will you become that? When you recognize the practical form of the father. What mistake did they make in recognizing him? They certainly kept saying through their mouth who God of the Gita is.
Krishna. नहीं है.
Krishna isn't that.
कौन है गीता का भगवान?
Who is God of the Gita?
Shiva.
Shiva.
लेकिन गीता के भगवान शिव का प्रैक्टिकल रूप उन्होंने चित्रों में क्या दिखा दिया?
However, what form of God of the Gita, Shiv, have they shown in the pictures in practice?
Krishna Jyoti Bindu.
The point of light.
Gita ke Bhagwan ka practical sakar roop kya dikhaya?
What have they shown as the corporeal form of God of the Gita in practice?
Jyoti Bindu.
The point of light.
Wo Jyoti Bindu koi practical sakar roop hai?
Is that point of light a corporeal form in practice?
Nahin.
No.
So iska matlab? नहीं पहचाना ना.
It means they didn't recognize him, did they?
शिव ज्योति बिंदु उनमें प्रवेश करके रहा.
शिव द पॉइंट ऑफ लाइट एंटर्ड हिम एंड स्टेड इन हिम.
वाणी भी चलाता रहा.
ही ऑल्सो कंटिन्यू टू नरेट द वाणीज.
फिर भी उसका प्रैक्टिकल साकार रूप कौन हुआ वो उसको नहीं पहचान पाए.
स्टिल ही दैट इज ब्रह्मा कुडंट रिकॉग्नाइज हु हिज कॉर्पोरियल फॉर्म इन प्रैक्टिस इज.
लास्ट में जाकर के जब बहुत दुखी हो गए.
एट द एंड व्हेन ही बिकेम वेरी सैड.
मम्मा तो उनकी सहयोगी थी.
मम्मा वाज सर्टेनली हिज हेल्पर.
मम्मा संभालती रहती थी ब्रह्मा बाबा को.
मम्मा यूज्ड टू लुक आफ्टर ब्रह्मा बाबा.
मम्मा जैसे ही बीमार होकर के बम्बई आई बस बाबा का बैलेंस बिगड़ गया. दुखी हो गए.
एज सून एज मम्मा फेल सिक एंड वेंट टू मुंबई बाबा लॉस्ट हिज बैलेंस. He started becoming sad.
बहुत दुखी हुए बच्चों ने उसी टीचर ने बहुत दुख तंग करना शुरू कर दिया तब थोड़ा उनकी बुद्धि में आया.
He became very sad. The children like scorpions and spiders started giving him lot of sorrow, started troubling him a lot. Then it came to his intellect to a little extent.
कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये राम के लिए दिया क्या? ये विद्यालय का नाम सिर्फ माँ के नाम पर होना चाहिए या माँ बाप दोनों के नाम पर होना चाहिए?
इट इज रॉन्ग टू राइट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. शुड दिस यूनिवर्सिटी बी नेम जस्ट आफ्टर द मदर और आफ्टर बोथ द मदर एंड द फादर? स्टूडेंट आफ्टर बोथ ऑफ देम.
तब बुद्धि में आए.
देन इट केम टू हिज इंटेलेक्ट.
कि ये तो हमसे भारी भूल हो गई.
दैट ही मेड अ ब्लंडर.
किसाने क्या से जो संस्था की स्थापना हुई उसका नाम ब्रह्म कुमारी विद्यालय रख दिया.
दैट ही नेम्ड द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड सिंस द ईयर 1951 एज ब्रह्म कुमारी विद्यालय.
प्रजापिता को क्यों बाप को क्यों छोड़ दिया?
व्हाई डिड ही लीव द फादर?
तब सन 66 से ये चित्र जो पुराने पुराने हैं उनमें लिखवाया गया.
Then, from the year 1965, it was written on the old pictures.
झाड़ का चित्र बाद में बना, उसमें भी लिखा. प्रजापिता ब्रह्मा को वाली विष्णु।
द पिक्चर ऑफ द कल्पाट्री वॉज प्रिपेयर्ड लेटर, इट वॉज रिटर्न इन दैट एज वेल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
सीढ़ी का चित्र बाद में बना, उसमें भी लिखा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय।
द पिक्चर ऑफ द लैडर वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड लेटर, इट वॉज रिटर्न इन दैट एज वेल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
65-66 से पहले वाले जो चित्र थे, जो 60-61 में तैयार हुए थे, त्रिमूर्ति का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, मैंने त्रिमूर्ति का चित्र और धार का चित्र, उनमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिखा हुआ था, प्रजापिता का नहीं था।
The pictures that were prepared before 1965-66, the pictures of Trimurti and the Kalpatri, which were prepared in 1960-61, Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya was written on them. The word Prajapita wasn't written on them.
जब ये नए चित्र बनाए गए लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के, तब उनमें प्रजापिता शब्द ऐड कराया गया।
When the new pictures of Lakshmi Narayan and ladder were prepared, the word Prajapita was added in 1965-66.
इसे साबित हुआ,
दिस प्रूफ,
कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी प्रजापिता भूला हुआ
था। दैट इवन ब्रह्मा बाबा हैड फॉरगॉटन प्रजापिता,
बाप को पहचाना ही नहीं,
ही डिडंट रिकॉग्नाइज द फादर एट ऑल,
कि ये भी कि आज में जिस हस्ती ने हमको सारे साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन दिया वही सुपर बॉस।
The personality who gave me the clarification of all the visions in the beginning of the yagya was himself the super boss.
वही गीता का भगवान साकार सृष्टि पे साबित होता है, वही ज्ञान का बीज डालने वाला बाप था, गीतापति भगवान था।
He himself is proved to be God of the Gita in the corporeal world. He himself was the father who sowed the seed of knowledge.
तो अभी भी ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि वास्तव में इस सृष्टि में साकार रूप में गीता का भगवान कौन और साकार में गीता माता कौन।
He was the husband god of the Gita. Even now, this concept isn't sitting in the intellect of Brahma's soul, who god of the Gita in the corporeal form in this world in reality is. And who the mother Gita in the corporeal form is.
चलो इतनी बात बुद्धि में बैठ जाए कि साकार में गीता माता ये, क्योंकि ये भी कि आज में ब्रह्मा बाबा भी कोई माता थी जिसके डायरेक्शन पर चलते थे।
All right, if this much sits in his intellect that this is the mother Gita in the corporeal form, it is because there was some mother in the beginning of the yagya whose directions Brahma Baba used to follow.
Yeah.
What?
कराची में जब तक रहे तब तक उन माताओं के कंट्रोल में चलते रहे।
As long as he stayed in Karachi, he was under the control of those mothers.
तो संसार तो उनके अंदर था, पहचानने का तो पहचाना आज में भी।
He did have the संस्कार of recognizing the mother, so he recognized her in the beginning as well.
अभी अंत में भी माँ को पहचानो।
He recognized the mother now at the end as well.
वो तो मात्र प्रस्ता आत्मा है।
इट इज बिकॉज ही इज अ मैट्री सेंट्रिक सोल।
वो नहीं पहचानेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे पहचानेंगे?
इफ ही डजंट रिकॉग्नाइज हर, हाउ विल हिज चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज हर?
तो ये कि मैं भी बेसिक नॉलेज वाले किसको पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं या माँ को पहचानते हैं?
सो इन द यज्ञ टू हुम डू दोज ऑफ द बेसिक नॉलेज रिकॉग्नाइज, द फादर और द मदर?
माँ को पहचानते।
दे रिकॉग्नाइज द मदर।
बेसिक नॉलेज में भी माँ को पहचाना और एडवांस नॉलेज में भी माँ के स्वरूप को तो पहचाना।
द फॉलोअर्स ऑफ द बेसिक नॉलेज एज वेल एज द एडवांस नॉलेज सर्टेनली रिकॉग्नाइज द मदर्स फॉर्म।
लेकिन एक भूल हो गई।
हाउएवर दे मेड वन मिस्टेक।
क्या?
व्हाट?
कि बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है? इस साकार सृष्टि पर बाप का, गीतापति भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है वो मेरे अपने को समझ लिए।
हु इज द फॉर्म ऑफ द फादर इन प्रैक्टिस? हु इज द फॉर्म ऑफ द फादर, द हस्बैंड गॉड ऑफ द गीता इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड इन प्रैक्टिस? ही देन कंसिडर हिमसेल्फ टू बी दैट।
किसने?
Who?
ब्रह्मा की सोल।
ब्रह्मा सोल।
आप सारी ब्रह्मा को मानिए अभी, गीता का भगवान साकार में प्रैक्टिकल में किसको मानती है?
कृष्ण।
वेल, whom do all the Brahma Kumaris also consider to be the corporeal god of the Gita in practice? Student, Krishna.
Krishna उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता का प्रैक्टिकल साकार भगवान मानती।
They consider Krishna alias दादा लेखराज ब्रह्मा to be the corporeal god of the Gita in practice.
अब मुरली में तो बोल दिया बाबा ने, स्पष्ट बोल दिया। अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं देंगे क्या?
Now, Baba has certainly said clearly in the Murlis, now it won't be called the nectar of the knowledge of the Gita. What?
Abhi, manasar arsat tak jab tak Baba, Brahma Baba Murli chalti rahi, tab tak kaha abhi Gita gyanamrit nahi kahenge.
Now means, until the year 1968, until the Murlis were narrated through Brahma Baba, it was said, now it won't be called the nectar of the knowledge of the Gita.
Kya kahenge?
What will it be called?
Gita Mata kahenge. Lekin Gita Gyan Amrit nahi kahenge. Kyon?
It will be called the Mother Gita, but it won't be called the nectar of the knowledge of the Gita. Why?
Brahma ke dwara jo kuch sunaya gaya wo Ved vani to nikli, लेकिन उसका मनन चिंतन मंथन नहीं हो।
Whatever was narrated through Brahma, that Vedvani certainly emerged, but it wasn't taught and churned.
सागर का जब तक मंथन न हो तब तक उसमें से रतन नहीं निकलते।
Unless the ocean is churned, gems don't emerge from it.
दूध अगर भिगोया न जाए, मंथन न किया जाए, तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता।
If the milk isn't churned, butter doesn't come out from it.
ऐसे ही परमात्मा शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, जिसे मुरली कहा गया, वास्तव में वो मुरली को अवगाहन नहीं हुआ, मंथन नहीं हुआ, इसलिए वो अमृत नहीं बन सकी।
In the same way, the knowledge that the Supreme Soul Shiv narrated through Dada Lekhraj Brahma was called Murli. In reality, no one went into the depths of those Murlis. They weren't churned. This is why they couldn't become nectar.
Amrit piyenge to amar banenge.
If you drink nectar, you will become immortal.
Kya mante hai?
What is the belief?
Amrit piyenge to amar banenge. Amrit nahi piyenge to amar devata nahi banenge.
If you drink nectar, you will become immortal. If you don't drink nectar, you won't become an immortal deity.
तो वो मनन चिंतन मंथन का काम तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और उनके स्थान पर वही यज्ञ की आदि वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा बीच नारी में आ गई और उसने मनन चिंतन मंथन शुरू कर दिया।
So that task of thinking and churning started when Brahma Baba left his body, and in his place, that very soul of the beginning of the yajna, the soul playing the part of Prajapita, came in the basic knowledge, and he started thinking and churning.
वो मनन चिंतन मंथन अंदर अंदर चलता रहा।
That thinking and churning kept going on within.
क्या?
What?
अंदर ही अंदर।
Within.
उसके लिए शास्त्रों लिख दिया है।
It has been written for it in the scriptures.
कि भागीरथ ने तपस्या की।
भागीरथ परफॉर्म तपस्या।
तो तपस्या करने से क्या हुआ? गंगा ऊपर से नीचे आई।
So what happened by his tapasya? The Ganges came down from above.
नीचे तो आई, लेकिन उन शंकर की जटाओं में ही घूमती रही।
She did come down, but she kept swirling in Shankar's hair locks itself.
Sachi ka kalyan karne ke liye niche nahi aayi.
She didn't come down to benefit the world.
To phir dobara tapasya ki.
So he did tapasya again.
Kisne?
Who?
Kisne?
Who?
Bhagirath.
Bhagirath.
Bhagirath ne दोबारा तपस्या की, दोबारा तपस्या की तो वो जटाओं में से गंगा बाहर निकल करके पृथ्वी वासियों की उद्धार के लिए नीचे आ गई।
भागीरथ डिड तपस्या अगेन। व्हेन ही डिड तपस्या अगेन The Ganges came out of his hair locks and went down to redeem the people of the earth.
तो जो मस्तक में जटाओं में गंगा घूमती रही उसका मतलब क्या हुआ?
So what does it mean that the Ganges kept swirling around the head or in the hair locks of Shankar?
कि अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन 69 से लेकर के और 76 तक चलता रहा।
The thinking and churning kept going on within from 1969 to 1976.
वो मनन चिंतन मंथन बाहर दबाया जब परमात्मा शिव उनके द्वारा प्रत्यक्ष होकर के पार्ट हो जाने।
That thinking and churning came out when the Supreme Soul Shiv was revealed and started playing the part through him.
पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं विदेशियों के सामने।
First of all, he is revealed in front of the Videshis.
यानि विदेशी बच्चे जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि के तीखे होते हैं, वो पहले पहचानते हैं।
It means the Videshi children who are intelligent, who are sharp with regards to the intellect, recognize him first.
भारत में भी दक्षिण भारत को विदेशी बताया और उत्तर भारत को स्वदेशी बताया।
Even in Bharat, South India is called Videsh and North India is called Swadesh.
भगवान का जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है कि विदेश में होता है?
Where is God born? In Bharat or in the foreign lands?
भारत
में होता है। तो उत्तर भारत में भगवान का जन्म गाया हुआ है, माना हुआ है या दक्षिण भारत में माना हुआ है?
He is born in Bharat. So, Is God's birth praised or considered to have taken place in North India or South India?
उत्तर भारत में माना हुआ है।
It is considered to have taken place in North India.
इसका मतलब कि अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने बोला कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश।
It means Baba has said in the अव्यक्त वाणी, South India is the foreign land of Bharat.
भारत का विदेश होने के नाते जब बाप की प्रत्यक्षा संक्षेत्र में होती है तो विदेशी आत्माएं जो है दक्षिण भारत का हुजूम वो पहले पहचानते हैं।
Because of being the foreign land of Bharat, when the father is revealed in the year 1976, the Videshi souls, the crowd of South India recognize him first.
अभी भी
Even now
कौन सा सन चल रहा है 2005
Which year is going on? 2005.
उत्तर भारत के लोगों ने अभी तक भी जाति उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया।
Even now, the people of North India haven't assimilated that knowledge much.
और दक्षिण भारत के लोगों ने पार्टियां की पार्टियां जा रही हैं।
And what about the South Indians? Many parties are going for bhatti.
जबकि वो भाषा भी नहीं जानते।
Whereas they don't know the language either.
उत्तर भारत वाले तो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं और दक्षिण भारत वाले भाषा भी नहीं जानते हैं।
In fact, the North Indians know Hindi very well, and the South Indians don't know the language either.
उनके रीति रस्म रिवाज भी अलग अलग हैं, खान पान भी अलग प्रकार का है।
The rituals, rites, and traditions are also different. Their eating and drinking habits are also different.
उत्तर भारत के मुकाबले
When compared to those from North India.
तो भी भगवान को पहचान लिए।
Yes, they have recognized God.
तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुए?
So, who is more intelligent?
उत्तर भारत वाले या दक्षिण भारत वाले?
The North Indians or the South Indians?
दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत। ज्यादा बुद्धिमान साबित हुए?
The South Indians proved to be more intelligent.
क्यों उन्होंने जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उस बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचान
ली? It is because they have recognized the father who is the intellect of the intelligent one.
लेकिन इसमें एक गलती हो जाती है थोड़ी सी क्या समझने
However, a slight mistake is made in understanding this.
दक्षिण भारत और उत्तर भारत की आत्मा होती है, यह दक्षिण भारत उत्तर भारत का शरीर होता है।
Does the soul or the body belong to South India or North India?
शरीर।
Student, body.
दक्षिण भारत का शरीर होता है, उत्तर भारत का शरीर होता है, यह आत्मा होती है दक्षिण भारत उत्तर भारत की।
Does the body or a soul belong to South India or North India?
शरीर।
Student, body.
शरीर होता है।
The body.
शरीर का कनेक्शन तो एक जन्म से।
The connection of the body is for one birth.
और आत्मा नहीं कही जाती है कि वो दक्षिण भारत की है उत्तर भारत की है।
And the soul isn't said to belong to South India or North India.
क्या?
What?
शरीर कहा जाता है ना, दक्षिण भारत का है उत्तर भारत का है, कि आत्मा कही जाती है।
The body is said to belong to South India or North India, isn't it? Or is the soul said to belong to it?
आत्मा तो तब कही जाए कि जब हमेशा ही उसने दक्षिण भारत में जन्म लिया हो या हमेशा ही उत्तर भारत में जन्म लिया, ये तो कोई निश्चित नहीं।
A soul will be said to belong to it when it is always born in South or North India. This isn't certain.
आत्मा कभी उत्तर भारत में जन्म ले सकती है, कभी दक्षिण भारत में जन्म ले सकती है।
A soul can sometimes be born in North India and sometimes in South India.
जहाँ जहाँ जिस आत्मा का जैसा संबंध बना होगा वैसा वैसा वहाँ जाकर के जन्म ले सकती।
Wherever and however a soul would have formed relationships, it might go there and be born accordingly.
तो ये गलतफहमी अंदर से नहीं रहने चाहिए कि हम दक्षिण भारत के।
So, you shouldn't have this misunderstanding that you belong to South India.
जिसके अंदर ये फीलिंग आती है कि हम दक्षिण भारत के हैं और अंदर से कुछ फील करते हैं कि हम तो विदेशी हैं, ये बात गलत।
The one who has this feeling that he belongs to South India and those who feel from within that they are Videshi, it is a wrong notion.
क्यों?
Why?
इसलिए गलत है कि जो अपन को दक्षिण भारत की समझते हैं उस समय वो अपने को आत्मा फीलिंग करते।
It is wrong because those who consider themselves to be South Indians, they don't consider themselves to be a soul at that time.
क्या समझते हैं?
What do they consider?
शरीर।
Student, body. They consider themselves to be a body.
देवान में आ जाते हैं।
They become body conscious.
देवान में आने के कारण फीलिंग होती है। जो आत्मा अभिमानी होता है उसको फीलिंग होती नहीं।
They feel this because of becoming body conscious. A soul conscious person doesn't feel this.
तो कहाँ के हो?
So, where are you from?
दक्षिण भारत के हो। आयु साउथ इंडियन, आयु साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन।
आर यू फ्रॉम साउथ इंडिया, आर यू साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन?
बताओ।
टेल मी।
साउथ इंडियन।
स्टूडेंट, साउथ इंडियन।
आप साउथ इंडियन हैं?
आर यू अ साउथ इंडियन?
आप।
यू।
आप कौन है?
Who are you?
Are you soul? Are you body?
Are you a soul or are you a body?
Soul. You are soul. Then tell me, are you South Indian or North Indian?
Students, soul. You are a soul. Then tell me, are you a South Indian or a North Indian?
North Indian.
North Indian.
Students, North Indian.
जब आप soul हैं, तो आप क्यों बता रहे हैं South Indian?
When you are a soul, why are you saying you are a South Indian?
By body South Indian.
Student, by body South Indian.
ये कहो, my body in the present birth, my body is South Indian.
Say say this. My body, in present birth, my body is South Indian.
I am not South Indian.
I am not South Indian.
Can you repeat it?
I am not South Indian.
I am not South Indian.
What should you say? Student, I am not South Indian. I am not South Indian.
My body in this present birth is South Indian.
My body in this present birth is South Indian.
In past birth?
I
may be North Indian.
In past birth, I may be a North Indian.
Yes?
Yes.
So, बच्चों को खुशी रहनी चाहिए. क्या खुशी रहनी चाहिए?
So, the children should be happy. What should they be happy about?
अगर हम आत्मा हैं, तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए. क्या खुशी रहनी चाहिए?
If we are a soul, the children should be happy. What should they be happy about?
हम भी स्वदेशी
हैं. Student, we are also a Swadeshi soul.
हाँ, हम स्वदेशी हैं.
Yes, we are a Swadeshi.
हम आत्मा विदेशी
नहीं.
ये तो लास्ट बर्थ में आकर के हमको सेवा करनी है.
We souls are in Videshis. It is about the last birth that we have to do service.
क्या?
What?
विदेशियों की सेवा करने के लिए बाप ने हमको यहाँ जन्म दे दिया.
बाबा has made us have birth here in order to serve the Videshis.
तो खुश होना चाहिए.
So, should you be happy?
Yeah, dukhi hona chahiye.
Or sad?
Khush hona chahiye. Kya hum last birth mein aakar ke videshi aatmaon ki bhi seva karne ke liye nimitta bane? Hamara baap bhi to videshiyon ki seva karne ke liye videshi bandar ke aaye honge.
You should be happy that you have become instruments in serving the videshi souls as well in the last birth. In fact, our father has also come as a videshi to serve the videshis.
क्या?
What?
बाबा क्या कहते हैं?
What does बाबा say?
बाप इस समय स्वदेशी है या विदेशी है?
विदेशी.
Is the father a Swadeshi or a Videshi at present? Student, Videshi.
बाप भी ये विदेशी बनकर के आया हुआ.
When even the father has come as a Videshi.
अगर विदेशी ना बने तो सब बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता. सब बच्चों के संपर्क में आ ही नहीं सकता.
If he doesn't become a Videshi, all children can't be benefited. He can't come in the contact and connection of all the children at all.
क्योंकि अगर स्वदेशी बन जाएगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बने.
It is because if he becomes a Swadeshi, he will become like Maryada Purushottam Ram, the best one among those who follow the code of conduct.
Maryada Purushottam Ram की क्या मर्यादा थी?
What was the maryada, that is code of conduct of Maryada Purushottam Ram?
Ek patni.
Having one wife.
Kya?
What?
Sada.
Is equal to remaining celibate forever.
Aur videshiyon ki jo maryada hoti hai, kya? Ek patni, sada brahmachari.
And videshis don't have this maryada. What? Having one wife is equal to remaining celibate forever.
तो बाप विदेशी बनकर इसलिए आया हुआ है कि सब विदेशियों का उद्धार हो सके.
So, the father has come as a Videshi, so that all the Videshis are uplifted.
जो विदेशी बच्चे हैं, वो भी स्वदेशी बन जाएं.
The Videshi children also become Swadeshis.
आखिरी जन्म में कुछ ऐसी आत्माएं हैं बाप समान जो अंतिम जन्म में आकर के विदेश में जन्म ले लेती है.
So, there are some of such souls equal to the father who are born in the foreign lands in the last birth.
Videshi sharir dharan kar leti hai.
They take on a Videshi body.
Baki aise nahi ki wo atma Videshi ho gayi.
As for the rest, it isn't that those souls are Videshis.
Koi atma ne 83 birth liya ho Swadesh mein aur last birth liya ho 84th birth Videsh mein. तो वो आत्मा स्वदेशी कही जाएगी विदेशी कही जाएगी.
इफ सम सोल हैज 83 बर्थ्स इन स्वदेश एंड हैज द लास्ट 84th बर्थ इन विदेश दैट इज अब्रॉड विल दैट सोल बी कॉल्ड अ स्वदेशी और अ विदेशी?
आत्मा स्वदेशी हुई ना.
स्टूडेंट स्वदेशी द सोल इज अ स्वदेशी इजंट इट
तो फीलिंग आनी चाहिए
सो शुड यू हैव दिस फीलिंग
नहीं
नहीं आनी चाहिए
स्टूडेंट नो यू शुडंट
तो बताया बाप से तुम बच्चों को विश्वपुरी का वचन
सो इट वॉज सेड You children receive the inheritance of Vishnu's abode from the father.
Yeah.
What?
Iska varsha milta hai?
What inheritance do you receive?
Vishnupuri.
Sukhadham ka varsha milta hai.
You receive the inheritance of Vishnu's abode, the abode of happiness.
Kaunsa varsha hai? Kaunsa dham sabse uncha hai?
What inheritance should you take? Which abode is the highest?
Shanti
dham sabse uncha hai.
The abode of peace is the highest.
उसके बाद है सुखदाम.
After it is the abode of happiness.
उसके बाद है दुखदाम.
After that is the abode of sorrow.
वर्षा फिर ऊंचे ऊंचे धाम का लेना चाहिए या नीचे धाम का लेना चाहिए.
Then should you take the inheritance of the highest abode or of the lower abode?
ऊंचे से ऊंचा धाम का वर्षा.
Student, we should take the inheritance of the highest abode.
शांति धाम का वर्षा लेना चाहिए तो हम तो पहले ऐसे बन जाएंगे वहीं पड़े रहेंगे
बाप आते हैं सुख को शांति देने के लिए
आते हैं सुख को शांति देने के लिए तो हम वर्षा कहाँ का लें
Should you take the inheritance of the abode of peace? Then you will become a Videshi and stay there itself. Student, the father comes to give us happiness and peace. He does come to give happiness and peace. So, we should take the inheritance of which place?
हम शांति धाम का वर्षा लें हमारी आत्मा शांति धाम में ज्यादा जन्म ज्यादा समय निवास करे या सुखधाम में ज्यादा समय निवास करना चाहती है
Should we take the inheritance of the abode of peace? Should our soul reside in the abode of peace for many births, for a long time, or does it want to stay in the abode of happiness for a long time?
Sukhadham.
Student, in the abode of happiness.
आत्मा की एक इच्छा होती है कि हमें शरीर सहित जो जीवन मिला हुआ है उस जीवन में हम सुख भोगे लेकिन दुख न भोगे
Yes, every soul has this very wish. That it should experience happiness and not sorrow in the life it has received with the body.
और ऐसा सुख अगर मिले जिसमें शांति भी समाई हुई है, तो बात ही क्या
है? In addition, if it experiences such happiness which includes peace as well, it is wonderful.
तो ऐसा ही सुख देने के लिए शिव बाप आते हैं जहाँ सुखदान में शांति भी होगी और सुख भी मिलेगा
So, the father Shiv comes to give happiness just like that, where there will be peace as well as happiness in the abode of happiness.
और जो विदेशी आत्माएं आती हैं, वो शांति धाम का वर्षा लेती
हैं. In addition, the Videshi souls who come take the inheritance of the abode of peace more.
ज्यादा और सुखधाम का वर्षा नहीं लेना चाहती बाप से.
And they don't want to take the inheritance of the abode of happiness from the father.
बाप से सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए शांति धाम का वर्षा लेना चाहिए
Should you take the inheritance of the abode of happiness or the abode of peace from the father?
सुखधाम
का वर्षा लेना चाहिए
You should take the inheritance of the abode of happiness.
तो इब्राहिम खुद क्राइस्ट गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर्स आते हैं वो आधा कल्प शांति धाम में बैठे रहते
So, Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak and their followers who come, stay in the abode of peace for half the cycle.
Sukhadham mein aate hi nahi.
They don't come in the abode of happiness at all.
To kya karna chahiye?
So, what should you do?
Hai? Kahan ka bada basi banna hai?
Where do you have to become the residents of?
Sukhadham ka.
Sukhadham ka basi, Sukhadham mein hai Vishnu.
The residents of the abode of happiness. There is Vishnu in the abode of happiness.
तो विश्वपुरी क्या तुम मालिक बनते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए पहले पहले ये निश्चय कराओ क्या
You become the masters of Vishnu's abode. So, you should be very happy.
पहले पहले इस बात का निश्चय कराओ क्या
Make others have this faith first of all.
हाँ
What?
कि हमें बाप से बचाना है.
We have to take the inheritance from the father.
Yeah.
What?
हमें ब्रह्मा से वर्षा नहीं लेना.
We shouldn't take the inheritance from Brahma.
विष्णु से भी वर्षा नहीं लेना.
We shouldn't take the inheritance from Vishnu either.
क्योंकि विष्णु से अगर वर्षा लेंगे तो विष्णु तो संगमित में होता है.
It is because if we take the inheritance from Vishnu, Vishnu is certainly present in the confluence age.
और संगमित से तो वर्षा लेने वाले होंगे. वो देवताओं से वर्षा लेंगे, विष्णु देवता से वर्षा लेंगे या भगवान से वर्षा लेंगे, गॉड फादर से.
एंड दोज हू टेक द इनहेरिटेंस इन द कॉन्फ्लुएंस एज, विल दे टेक इनहेरिटेंस फ्रॉम द डीटी विष्णु और फ्रॉम गॉड द फादर?
किससे वर्षा लेने वाले होंगे?
फ्रॉम होम विल दे टेक द इनहेरिटेंस? स्टूडेंट, फ्रॉम द डीटीज.
देवताओं से वर्षा लेना.
They receive the inheritance from the deities.
तो देवताओं से वर्षा मिला, देवता तो नीची कोटि के होते हैं, भगवान तो उनसे भी ऊंची कोटि का है.
The deities belong to the lower category. God, in fact, belongs to a higher category than them.
उनके से उनके बाप से वर्षा लेंगे तो ऊंचा वर्षा मिलेगा.
If you take the inheritance from the highest of the high father, you will attain a high inheritance.
और नीचे वालों से वर्षा लेंगे, नंबर वालों से.
And if you take the inheritance from the lower ones, the number wise ones, you will also attain lower inheritance. You can't be happy to that extent.
तो पहले पहले ये निश्चय कराओ, दिखाना चाहिए कि बरोबर ही हमारा बाप है.
So first of all, you should make others have this faith and make them right. He is certainly our father.
दिखाई लेना चाहिए.
You should make them right.
क्या?
What?
वो कहते हैं लिखाते क्यों? ये तो भगवान का काम है, इसमें लिखाना लिखा पट्टी करने का क्या काम?
Some say, why do you make us write? This is certainly God's task. What is the need of making us write?
नहीं.
No.
आज क्या है हमारा बाप है और कल मुकर जाए कहेंगे नहीं तो बाबा कुछ नहीं.
Today they say he is their father. Tomorrow when they disagree saying no, he isn't our father at all.
तो उन्हें दिखाया भी जा सकता है, देखो तुम ही नहीं तो दिखा सकता, ये हमारा पाप है.
यू कैन एटलीस्ट शो इट टू देम सेइंग लुक यू योर सेल्फ हैड रिटन ही इज योर फादर.
है तो साबित कर सको है कि तुम्हारी आत्मा देसी है या विदेशी है.
सो यू कैन प्रूव वेदर योर सोल इज अ नेटिव और अ विदेशी.
जो विदेशी होते हैं वो तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को अपना पाप मान लेते हैं.
Those who are Videshi, they consider Abraham, Buddha and Christ as their father.
वो एक बाप को नहीं मानते.
They don't accept the one father.
और स्वदेशी?
And what about the Swadeshis?
एक बाप को माने?
They will certainly accept the one father.
खून एक बाप का हो वो अच्छा या दो बाप का खून हो वो अच्छा?
Is it good to have the blood of one father or of two fathers?
एक बाप
का खून होना चाहिए.
You should have the blood of one father.
कृष्ण का खून कैसा होता है?
How is Krishna's blood?
है? एक बाप से जन्म लेता है और दूसरा बाप उसको पालता है.
He is born from one father and another father sustains him.
तो कितने बाप हो गए?
So, how many fathers did he have?
है? दो बाप.
He had two fathers.
तो कृष्ण को जो फॉलो करेंगे, कृष्ण और उसका ब्रह्मा को जो फॉलो करेंगे, उनके भी क्या हो जाएंगे?
So, what will happen even of those who follow Krishna alias Brahma?
उनके भी दो बाप हो जाएंगे.
They too have two fathers.
दोगले हो गए.
They are mixed blood.
क्या? दोगला होना अच्छा है या एक बाप का बच्चा बनना अच्छा?
What? Is it better to be mixed blood or to be the child of one father?
एक बाप का बच्चा बनना चाहिए.
You should become the child of the one father.
एक बाप का बच्चा बनेंगे तो एक ही खून रहेगा.
इफ यू बिकम द चाइल्ड ऑफ द वन फादर यू विल हैव वन काइंड ऑफ ब्लड.
और दो बाप का बच्चा बनेंगे तो दो तरह का खून आ जाएगा.
इफ यू बिकम द चाइल्ड ऑफ टू फादर्स यू विल हैव टू काइंड ऑफ ब्लड.
खून चेंज हो गया ना?
द ब्लड चेंज्ड डिडंट इट?
तो बाप किसकी बनेगा?
सो हुम विल ही लिसन टू?
जिसके अंदर दो तरह का खून है, दो बापों का खून है, वो किसकी बात मानेगा?
The one who has two kinds of blood, the blood of two fathers, who will he listen to?
एक बाप की बात मानेगा या दो बाप की बात मानेगा?
Will he listen to one father or two fathers?
दोनों बाप की माननी पड़े?
He will have to listen to both the fathers.
फिर तो नीचा पद हो गया ना?
Then he certainly has a low position, doesn't he?
इसलिए हम एक बाप की संतान.
This is why we are the children of the one father.
क्या?
What?
हम एक ही मत पर चलने वाले हैं.
We are the ones who follow the directions of the one.
हम कोई दूसरे की मत पर चलने वाले नहीं.
We aren't the ones who follow the opinion of anyone else.
एक बाप को?
Who is the one father?
एक शिव बाबा, दूसरा.
One Shiv Baba and no one else.
वो कहेंगे एक शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में भी था.
They will say one Shiv Baba was certainly present in Brahma's body as well.
अरे ब्रह्मा तन में था.
अरे he was present in Brahma's body.
लेकिन वो तो माँ था, ब्रह्मा.
But he was the mother, Brahma.
ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, वो तो बड़ी माँ थी, बाप कहाँ था?
Brahm means senior and Ma means mother. In fact, he was the senior mother. He wasn't the father.
हम तो एक बाप के बच्चे हैं. क्या? वो बाप जो है, वो माँ का कार्य तो करता है.
We are certainly the children of the one father. What? That father does perform the task of the mother.
लेकिन माँ का चोला धारण नहीं करता.
But he doesn't take on the mother's body.
यज्ञ के आदि में भी.
In the beginning of the yajna too.
बाप का चोला था, पुरुषतन था, और यज्ञ के अंत में भी पुरुषतन वाला होता है.
He had the father's body, the male body. And in the end of the yajna also, he is the one with the male body.
स्त्री चोला धारण नहीं करता.
He doesn't take on a female body.
रानी बनना अच्छा या राजा बनना अच्छा?
Is it better to become a queen or a king?
राजा बनना अच्छा.
Student, it is better to become a king.
राजा ही तो बनना बाबा देने के लिए आया है या रानियों को बनना देने के लिए आया है?
Has Baba come to give the inheritance of kingship or has he come to give the inheritance of the queens?
Raja hi ka vasta dene.
Student, to give the inheritance of kingship.
Baap to aaya hai Raja hi ka vasta dene ke liye.
The father has certainly come to give the inheritance of kingship.
To Raja banna chahiye ya Rani banna chahiye?
So, should you become a king or a queen?
Raja banna chahiye.
You should become a king.
Kyunki hame maloom hai Rani to bhi aadhi hoti hai. किसके आधीन होती है?
राजा के
आधीन. राजा के आधीन
रहना पड़ता है. इट इज बिकॉज वी नो दैट क्वींस आर स्टिल सबॉर्डिनेट. हु आर दे सबॉर्डिनेट टू? स्टूडेंट, द किंग. दे हैव टू बी सबॉर्डिनेट टू द किंग.
बाप हमें अधिकारी बनाने के लिए आया है या आधीन बनाने के लिए आया है?
हैज द फादर कम टू मेक अस अ रूलर और सबॉर्डिनेट?
अधिकारी. बाप हमें अधिकारी बनाने के लिए आया.
The father has come to make us a ruler.
तो हम अधिकारी बनकर के राजा बनकर के रहेंगे. हम रानी बनने वाले नहीं.
So we will stay as a ruler, a king. We aren't going to become a queen.
रानी का वर्षा जो है, वो रानी का जो वर्षा है वो उनको मिलता है जो बाप को भी मानती है लेकिन पहचान नहीं पाती बाप को पहले, और माँ को पहले से जानती है.
They receive the inheritance of queens who accept the father as well. However, they aren't able to recognize him first, and they know the mother well before.
माँ को जानती भी है, पहचानती भी है, और उनकी चलाई हुई परंपराओं पर चलती भी है.
They know the mother, recognize her, as well as follow the traditions started by her.
Last में जाकर के बाप को पहचान लेते.
They recognize the father at the end.
कौन?
Who?
कौन?
Who?
जो रानी बनने वाली आत्माएं.
The souls who become queens.
तो उनको थोड़ा आधीन रहना पड़ता है.
So they have to be subordinate to some extent.
और हम तो आज से लेकर के अंत तक किसको मानने वाले?
In addition, who do we accept from the beginning till the end?
एक बाप को मानने वाले. एक बाप ने जो परंपरा मुरली में स्थापन कर दी उस मुरली की बात को मानने वाले हैं. मुरली से प्यार माना Muralidhar Bapu Tyagi.
We accept the one father. The traditions which the one father started in the Muralis, we are the ones who follow the concepts of those Muralis. Love for the Muralis means love for the Muralidhar father. Muralidhar means the narrator of the Muralis.
और जो मुरलीधर बाप को प्यारे नहीं होते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, वो फिर ब्रह्मा को पकड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पकड़ते हैं, उनकी बताई हुई रास्ते पर चलते हैं.
And those who aren't dear to the Muralidhar father, who don't love him, take hold of Brahma, the Brahma Kumar Kumaris. They follow the path shown by them.
हम किसी देहदारी के रास्ते पर चलने वाले नहीं.
We aren't the ones who follow the path shown by any bodily being.
इसलिए बताया कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा बाप है और ये विष्णु है स्वर्ग का वर्षक.
This is why it was said. The children should be very happy thinking, this is our father and this Vishnu is the inheritance of heaven. What? We have to take the inheritance of heaven from the father.
Vishnu se nahi le. Vishnu ka arth hai Vaishnav nikalta hai.
We shouldn't take it from Vishnu. We can derive the meaning of Vishnu from Vaishnav.
क्या?
What?
ब्रह्मा का अर्थ ब्राह्मण से निकलता है, शिव का अर्थ शैव संप्रदाय वालों से निकलता है.
We can derive the meaning of Brahma from Brahmins. We can derive the meaning of Shiv from those belonging to the Shaiv community.
ऐसे ही विष्णु के जो बच्चे बनते हैं, पांडवर बनते हैं, वो वैष्णव है.
Similarly, those who become the children or followers of Vishnu are called Vaishnav.
ये तो सब जानते हैं.
In fact, everyone knows this.
भारतवासी तो अच्छी भी जानते हैं, ये देवी देवता निर्विकारी हैं.
The Bharatvasis know it nicely. These deities are viceless.
क्या?
What?
देवी देवताएं निर्विकारी हैं.
The deities are viceless.
जो फरिश्ताएं होते हैं, वो भी निर्विकारी तो होते हैं, फरिश्ताओं को विकार नहीं कहेंगे, लेकिन उनको शरीर नहीं होता है.
The angels are also no doubt viceless. They won't be called vicious, but they don't have a body.
क्या?
What?
फरिश्ताओं को अपना शरीर नहीं होता.
The angels don't have a body of their own.
उनके फर्श पर पांव नहीं पड़ते.
They don't keep their feet on land.
अगर पड़ते भी हैं, तो बुद्धि से डिटैच होते रहते हैं.
Even if they keep them, they stay detached through their intellect.
फर्श वालों से ये रिश्ता जोड़ते नहीं है.
They don't form relationship with those on land.
इसलिए उनको कहा जाता है फरिश्ता.
This is why they are called फरिश्ता, angels.
और वो फरिश्ताएं विदेशों में गाए जाते हैं.
And those angels are praised in foreign lands.
जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो फरिश्तों को मानती हैं.
The souls of the other religions believe in angels.
हमारे भारत में फरिश्तों को नहीं माना जाता.
People don't believe in angels in Bharat.
क्या? उनको सूक्ष्म शरीर होता है.
What? They have subtle bodies.
जो सूक्ष्म शरीर धारण करता है, धारण करने वाली आत्माएं होती है, वो थोड़ी गिरी हुई कैटेगरी.
The souls who take on subtle bodies are the ones belonging to lower category.
क्यों?
Why?
वो साकार शरीर उनको छोड़ना पड़ता है जबरियन.
They forcibly have to leave their corporeal bodies.
और हम तो उस किस्म की आत्माएं हैं जो साकार शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ने की आदी.
Whereas we are such kind of souls who are accustomed to leaving our corporeal body as per our own wish.
Yeah.
What?
हम जब इच्छा करेंगे कि शरीर छूट जाए, तब छूटेगा.
When we wish to leave our body, we will leave it.
नहीं तो शरीर छूट नहीं सकता.
Otherwise, we can't leave our body.
इच्छा मृत्यु होगी.
We will die as per our own wish.
जो फरिश्ते होते हैं, उनकी इच्छा मृत्यु नहीं होती.
The angels don't die as per their own will.
स्वेच्छा से वो शरीर छोड़ना चाहे, सो नहीं होता है, उनको जबरन शरीर छोड़ना पड़ता है. क्योंकि पाप कर्म का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है तो सूक्ष्म शरीर छोड़ना पड़ता है, वो स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है।
दे कांट लीव देयर बॉडी एज पर देयर ओन विश, दे फोर्सिबली हैव टू लीव देयर बॉडी। It is because when the burden of their sinful deeds increases a lot, they have to leave their physical body.
तो ये तो सब जानते हैं।
So everyone knows it.
भारतवासी तो अच्छी रीति जानते हैं।
The Bharatvasis do know it nicely.
क्या?
What?
ये देवताएं निर्विकारी हैं। ये स्वर्ग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे।
These deities are viceless. They used to stay in the pure household path in heaven.
कहाँ रहते थे?
Where did they used to stay?
स्वर्ग में रहते थे, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते।
They used to stay in heaven, but in the pure household path.
फरिश्तों के लिए ऐसा नहीं है।
This isn't said for the angels.
जाते भी हैं आप सर्वों सुसंपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण हम हैं संपूर्ण विकारी।
They also praise, you are complete with all the virtues, you are viceless. Whereas, we are completely vicious.
सचिव में संपूर्ण विकारी, कलयुग में संपूर्ण विकारी, विकारी को पतित कहना, भ्रष्टाचारी कहना, बात एक ही है।
There are completely viceless ones in the golden age, whereas there are completely vicious ones in the iron age. It is the same to call the vicious one impure or भ्रष्टाचारी।
क्या कहा?
What was that?
विकारी तब कब कहा जाता है?
When is someone called vicious?
तमोप्रधान बनता।
नहीं।
Student, when he becomes तमोप्रधान? No.
विकारी तब कहा जाता है पतित माना गिरी हुई इंद्रियां।
Someone is called vicious when impure means degraded इंद्रियां।
जो इंद्रियां गिरती।
The इंद्रियां that degrade.
आंख है, नाक है, कान है, ये शेष इंद्रियां है या भ्रष्ट इंद्रियां?
Are the eyes, nose, ears the elevated or the corrupt इंद्रियां?
भ्रष्ट माने गिरी हुई।
Student, corrupt. Corrupt means degraded ones.
और शेष माने गिरी हुई नहीं कही जाती।
And elevated means it isn't called degraded one.
तो शेष इंद्रियों से जब तक सुख भोगा जाता है वो है निर्विकारी।
So, as long as they seek pleasures through the elevated indriya, they are viceless.
और द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से जब सुख भोगा जाता है तो वो है विकारी।
And when they seek pleasures through the corrupt indriya, since the copper age, they are vicious.
विकारी भी उनको कहा जाता है और भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है।
They are called vicious as well as भ्रष्टाचारी.
भ्रष्टाचारी इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने लग पड़ते हैं।
They are called भ्रष्टाचारी because they start acting through the corrupt इंद्रियां।
शेष इंद्रियों का आचरण धीरे धीरे भूल ही जाता है।
They just forget acting through the elevated इंद्रियां gradually.
अभी बाप हमको आए हैं श्रेष्ठाचारी बनने।
Now the father has come to make us श्रेष्ठाचारी।
यानी शेष इंद्रियों का आचरण सिखाने के लिए आए हैं।
He has come to teach us to act through the elevated indriya.
शेष इंद्रियों से आचरण करके हम सृष्टि को बनाएंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे।
We will create the world acting through the elevated indriya. We will expand the world.
भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करके हम इस सृष्टि को पतित तमोप्रधान सृष्टि को बढ़ाने वाले नहीं।
We aren't going to act through the corrupt indriya and expand this impure tamopradhan world now.
तो विकारी पतित को कहा जाता है, विकारी कहो या भ्रष्टाचारी कहो, बात एक ही है।
So an impure one is called vicious. You may call him vicious or भ्रष्टाचारी. It is the same.
विकृति कौन सी इंद्रियों में पैदा होती है ज्यादा?
Which indriya become more vicious?
जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनमें जास्ती विकृति पैदा होती है।
The corrupt इंद्रियां become more vicious.
शेष इंद्रियों में उतनी विकृति पैदा नहीं होती।
The elevated इंद्रियां don't become vicious to that extent.
जैसे आंख है।
For example, there are eyes.
आंख से देखा।
You saw someone through the eyes.
पता चला विकारी है कि निर्विकारी?
Did you come to know whether he is vicious or viceless?
तुरंत नहीं पता चलेगा।
You won't come to know that immediately.
बाद में पता चलता है जब ध्यान से देखेंगे कि विकारी है निर्विकारी।
यू कम टू नो वेदर ही इज विशियस और वाइसलेस लेटर व्हेन यू सी हिम केयरफुली।
ऐसे ही जो व्रत इंद्रियां हैं और उनका विकार और निर्विकार तो तुरंत पता चल जाता है।
In the same way, you immediately come to know whether the corrupt indriya are vicious or not.
अपने को भी पता चलता है, जो संघ में आते हैं उनको भी पता चलता है।
You yourself come to know, as well as those who come in connection come to know about it.
तो पतित भ्रष्टाचारी माना विकार में जाने वाला।
So, a vicious भ्रष्टाचारी person means the one who indulges in vices.
क्रोधी को पतित और भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता।
An angry person isn't called vicious and brashtachari.
क्यों?
Why?
क्यों नहीं कहा जाता?
Why isn't he called that?
कारण क्या है?
What is the reason?
जब क्रोध आता है,
When someone is angry,
तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करता है क्या?
Does he use his corrupt indriya?
नहीं करता।
He doesn't.
तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं करता है, इसलिए क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता।
As an angry person doesn't use the corrupt indriya, he isn't called impure.
आचरण किससे करता है?
Which indriya does he use?
आंखें लाल पीली हो जाती।
His eyes turn red.
जो शेष इंद्रियों का मुख है वो लाल हो जाता है, टमटमा जाता है या काला चेहरा हो जाता है।
The face of the elevated indriya turns red or black.
भ्रष्ट इंद्रियों को कोई असर नहीं पड़ता है।
It doesn't affect the corrupt indriya.
इसलिए क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, इसको पतित कहा जाता है, कामी को पतित कहा जाता है।
This is why an angry person isn't called impure. Who is called impure? A lustful person is called impure.
क्योंकि काम विकार जब होता आता है तो भ्रष्ट इंद्रियों को उत्तेजना आती।
It is because when you have the vice of lust, your corrupt indriya become excited.
तो बोला क्रोधी को पतित नहीं भ्रष्टाचारी, क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता।
So it was said, an angry person isn't called impure or भ्रष्टाचारी।
क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है।
In fact, even the sannyasis have anger.
लेकिन उसको पतित नहीं कहेंगे।
But they won't be called impure.
सन्यासी जो है वो पावन कहे जाते हैं।
The sannyasis are called pure.
तो पहले पहले परिचय देना ही है बाप का।
So you definitely have to give the introduction of the father first of all. The father is the highest of the high.
बाप जो भारत में आते हैं।
The father who comes in Bharat.
तो ये तो पहले निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे।
So you should have this faith first that Baba is teaching you.
क्या?
What?
पढ़ाने वाले?
बाबा।
ब्रह्मा बाबा नहीं है।
ब्रह्मा बाबा इज इन द टीचर।
पढ़ाने वाले विष्णु नहीं है।
विष्णु इज इन द टीचर।
ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है।
ब्रह्मा और विष्णु आर इन द टीचर।
पढ़ाने वाली दीदी दादी या दादाएं नहीं है।
दीदी दादीज और दादाज आर इन द टीचर।
पढ़ाने वाले कौन है?
हु इज द टीचर?
शिव बाप।
द फादर शिव।
और शिव बाप का बड़ा बच्चा कौन?
And who is the elder son of the father Shiv?
Shankar.
Shankar. So, वो हमारा दादा हो गया।
Shankar. So, he is our dada, that is the elder brother.
ये हुई सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज।
This is the highest stage.
बाप और दादा।
The father and dada.
ये आत्मिक स्थिति की बात है।
This is about the soul conscious stage.
दोनों ही आत्मिक स्थिति में।
Both of them are in the soul conscious stage.
बाप भी आत्मिक स्थिति है, वो तो है ही सदाशिव।
The father also has the soul conscious stage. He is no doubt सदाशिव, that is always beneficial.
उसके तो देहान में आने की बात ही नहीं।
There is no question of him becoming body conscious at all.
लेकिन जिससे वह प्रवेश करता है ऊपर रूप से, वो भी सदाकाल की आत्मिक स्थिति वाला बन जाता है।
However, The one whom he enters permanently also becomes the one with the soul conscious stage forever.
इसलिए वो बाप समान बन जाता है।
This is why he becomes equal to the father.
इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं बड़ा भाई
This is why it is said in the Indian tradition, the elder brother is equal to the father.
क्यों?
Why?
बड़ा भाई बाप समान क्यों होता है? छोटा भाई क्यों नहीं?
Why is the elder brother equal to the father? Why isn't the younger brother that?
अरे छोटा भाई मेहनत करे पुरुषार्थ करे तो बाप समान नहीं बन सकता?
अरे can the younger brother become equal to the father if he works hard, makes purushart?
छोटा भाई क्यों नहीं होता?
Why isn't the younger brother equal?
बड़ा भाई जो है वो लंबे समय की प्योरिटी के बाद पैदा होता है.
The elder brother is born after long time purity.
बड़ा भाई की पैदाइश जब होती है तो लंबे समय की जो प्योरिटी है उस प्योरिटी से उसकी पैदाइश होती है.
When the elder brother is born, he is born with long time purity.
इसलिए उसमें पावर ज्यादा आ जाती है.
This is why he has more power.
और छोटे छोटे भाई जो है जो उसके बाद पैदा होते हैं.
And what about the younger brothers who are born after him?
कोई की 4 साल की, कोई की 8 साल की, ज्यादा 10-15 साल की प्योरिटी होगी.
Some may have the purity of 4 to 8 years. They may at the most have the purity of 10 to 15 years.
तब उनकी पैदाइश होती.
After that, they are born.
तो पावर कम हो जाती.
So, their power decreases.
इसलिए बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है. तो पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाए रहे हैं.
This is why the elder brother is called equal to the father. So, you should have this faith first of all, Baba is teaching us.
Yeah?
What?
Baba नहीं पढ़ा रहा है शिव बाबू.
The father Shiv isn't teaching us.
कौन पढ़ा रहा?
Baba.
Who is teaching us?
शिव बाबा. बाबा किसको कहा जाता है?
शिव बाबा. Who is called Baba?
साकार और निराकार.
साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है.
The combination of the corporeal and the incorporeal one is called Baba.
कोई ब्रह्मा कुमार कहने लगे अच्छा साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है तो निराकार शिव और ब्रह्मा बाबा में आते थे ना तो वो शिव बाबा हुआ ना.
Some ब्रह्मा कुमार would start saying, अच्छा if the combination of the corporeal and the incorporeal one is called Baba, the incorporeal Shiv used to come in ब्रह्मा बाबा, so he is Shiv Baba, isn't he?
अरे शिव बाबा तो तब हुआ जब ब्रह्मा और शिव को मिला के एक कर दिया जाए.
अरे he will be called शिव बाबा if ब्रह्मा एंड शिव आर कम्बाइंड एंड मेड वन.
ब्रह्मा और शिव को मिला के एक किया जाए पाएंगे.
आर ब्रह्मा एंड शिव कम्बाइंड एंड मेड वन.
ब्रह्मा ने बाप समान स्टेज बनाई नहीं ना करी.
डिड ब्रह्मा अटेन द इनकॉर्पोरियल स्टेज इक्वल टू द फादर?
कोई चित्र ऐसा है ब्रह्मा बाबा का जो निराकार स्टेज वाला हो?
Is there any photo of Brahma Baba with an incorporeal stage?
हजारों चित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियों के खींचे गए उनमें कोई निराकारी स्टेज वाला चित्र है?
There are thousands of his photos shot by Brahma Kumar Kumaris. Is any one of them with an incorporeal stage?
नहीं.
There isn't.
तो बाप तो निराकारी होने चाहिए.
The father should certainly be incorporeal.
तो वो हमारा बाप सुप्रीम सोल सेवर मनुष्य शक्ति के उस बाप में आता है जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है. वो तो है ही असलियत में बीज. तो उसको बीज रूप स्टेज में रहने में कोई तकलीफ या कोई कठिनाई नहीं होती है.
सो आवर फादर द सुप्रीम सोल शिव कम्स इन दैट फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड हु इज द सीड ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड. ही इज सर्टनली अ सीड इन रियलिटी. सो He doesn't have any trouble or any difficulty in stabilizing in the seed form stage.
वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज में सबसे पहले स्थिर हो जाता है.
He stabilizes in the incorporeal, viceless and egoless stage first of all.
तो जो पहला नंबर लेता है उसी का नाम शिव के साथ मिला दिया गया.
So, the name of the very one who stands first is added with that of Shiv.
शिव शंकर भोलेनाथ.
शिव शंकर भोलेनाथ.
शिव विष्णु नहीं कहा जाता.
इट इज़न्ट सेड शिव विष्णु.
शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता.
इट इज़न्ट सेड शिव ब्रह्मा.
इसलिए ब्रह्मा के स्वरूप को शिव बाबा नहीं कहेंगे.
दिस इज वाई ब्रह्मा फॉर्म वोंट बी कॉल्ड शिव बाबा. ओम शांति.